نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في قرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل والمرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வதஆலா கா பஹுத் ஹி படா கரம், பஹுத் படி இனாயத், ஔர் பஹுத் படா ஃபஸ்ல ஹை. கேசே அஸீம் தின் ஔர் பஹுத் ஹி قیمتی گھڑیوں میں جس وقت کے عرفات کے اندر حاجیوں کا ہجوم ہوگا، لوگوں کا ہجوم ہوگا، اور یہ اس وقت جو ہمارا تاثر کا ٹائم ہے، غالباً وہاں سورج غروب ہونے والا ہوگا اور وقوف کے لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے بخشش ہو رہی ہوں گی. ایسے حسین ترین موقع پر اللہ پاک نے ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں کہ جو اس وقت کے لیے خاص مخصوص ہے، خاص اللہ کو ان گھڑیوں میں جو سب سے زیادہ پسند ہے چیز وہ اپنے ذکر کی ہے. ایک ہی عبادت اللہ نے فرمائی ہے عرفات کے اندر، اور وہ کثرت ذکر ہے. اور واقعی اسی بنا پر ہر حاجی جو ہو اس وقت تکبیر تحلیل اللہ کے ذکر میں محو ہوگا، بڑکڑا کے دعائیں اللہ سے مانگ رہا ہوگا. تو الحمدللہ یہی سمجھیں ان کی نقل میں اللہ نے ہمیں بھی توفیق عطا فرما دی کہ ہم لوگ بھی جمع ہو گئے. اور یہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے نعمات ہوتے ہیں انسان میں. اگر میں وقت کو دیکھوں اپنی طرف سے، میں بالکل جو باتیں کرتا ہوں وہ کسی تغیر کے انداز میں نہیں کرتا، بلکہ حقیقت اس قیمت کے لحاظ سے کرتا ہوں، تو شاید مجھے نظر نہیں آتا کہ کبھی ایسا موقع آیا ہو، مجھے یاد نہیں آ رہا کبھی ایسا موقع آیا ہو کہ عرفات کا دن ہو، عصر کا وقت ہو، اور ایک بہت بڑی اللہ والوں کی جماعت ذکر کے لیے بیٹھی ہو اور میں ذکر کرا رہا ہوں. مجھے دیکھ، حالانکہ آپ کو پتہ ہے میری ذکر سے کتنے منصب نسبت ہے، اور ظاہر ہے کیسے کیسے وقت گزرے ہوں گے، اب تک 50 سال ہو، 50 سال سے زیادہ. غور کیا میں نے کہ اللہ تعالیٰ کی عام بات کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنی نایاب چیز ہے، کتنی نایاب چیز ہے. ایک دم بس کل خیال آیا اتفاق سے بھئی یہ کام، حالانکہ پوری زندگی میں ذکر ہم کرتے ہیں اللہ میں، لیکن مخصوص اس طریقے سے ذکر کا کرنا اللہ کا کرم نہیں ہے بتایا کہ انسان خواہش رکھنے کے باوجود بھی وہ وقت جمع نہیں کر سکتا، وہ لمحات نہیں سمیٹ سکتا، ویسے ذکر نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ چاہتے ہیں تو ہو جاتا ہے. 40-50 سال میں نہیں کر سکا ایسے ذکر، کر نہیں سکا کہ 20 سال ادھر عرفات کا وقت ہو، لوگ دعائیں مانگ رہے ہوں، اور الحمد للہ مجھے اتنی فراغت مل چکی ہو، اور لوگ بھی ایسے ہوں الحمد للہ تیار ہوں، اور مسجد کا کونا بھی نصیب ہو جائے، بڑا ذوق بھی ہو لوگوں میں، اور وقت بھی عصر مغرب کا ہو جو پیک وقت ہے عرفات کا، پیک وقت ہے. میں نہیں کہہ رہا، حدیث ہے، رحمت اللہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں، اسی موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرفات میں کھڑے ہوئے और पूरा मजमा था हाजियों का। आप सबसे इरशाद फरमाया कि साहबियो तुम्हें मालूम है ये कौन सा दिन है? तो साहब खामोश, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। कहने ये हज अकबर का दिन है। फिर फरमाया तुम्हें मालूम है ये कौन सा दिन है, कौन सा वक्त है, कौन सी घड़ी है, ये किस कदर कीमती होंगे अल्लाह के नबी फरमाया। साहब फिर खामोश। तो सुनिए क्या फरमाया अल्लाह ताला। फिर आप भी सोचिए जरा कि अल्लाह की रहमत होती क्या चीज़ है और फजल किस चीज़ का नाम है। फरमाया तुम्हें मालूम है ये कौन सा दिन है? खामोश साहबी। फरमाया कि दिन अल्लाह से मांगने का दिन है, दुआ मांगने का दिन है, और फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करने का दिन है। कितनी बड़ी बात है ये, इत्तेफाक नहीं तो अल्लाह की करम ही है, फजल ही होता है इंसान को जो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मौके दफ मदद। और जब ऐसा कर दिया तो ये इसका इनाम नहीं होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन तीन चीज़ों पर कि अगर इस वक्त कोई ये काम करता है इस दिन में इन लम्हात में, तो फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तीनों चीज़ों से उसको महरूम नहीं करेगा। बड़ी बात है कितनी, यानी आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कीमती घड़ी अल्लाह ने हमें नसीब फरमा दी, इसका क्या शुक्र अदा कर सकते हैं आदमी। बहुत ही अजीम वक्त है ये अरफात की घड़ी में, और फिर अल्लाह के जिक्र में शामिल हो जाना। एक और हदीस मुझे याद आती है इसी सिलसिले में, आप देखें कि जिक्र और अरफात की क्या नस्बत है आपस में। हदीस में आता है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने हदीस को रवायत फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अरफात के दिन है फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं, अल्लाह आसमान पर फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि जाओ, तुम्हें मालूम है बहुत ज़बरदस्त दिन है आज, मेरी रहमत जोश में सो, और जाओ देख कर आओ कि इस वक्त कौन मेरी वहदानियत रबूनियत किस तस्दीक कर रहे हैं बैठ कर। सुभान अल्लाह, ये क्या हो रहा है? बस तो सामने जिक्र अल्लाह, अल्लाह का जिक्र कौन कर रहा है? तो फरमाया जाता है इतने फरिश्ते उतरते हैं, इतने फरिश्ते उतरते हैं कि अगर आप सुई फेंकें तो फरिश्ते को लगे, इतनी जगह नहीं होती, सुई की क्या कीमत है। इतने आसमान से फरिश्ते उतरे हुए हैं इस वक्त, हदीस के रूप से आप देखें कि सुई फेंकने सुई फरिश्ते को लगेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब देखते हैं जनाब जहाँ पर ये रब तस्दीक हो रही है वहदानियत की, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमात, ये ज़िक्रुल्लाह, इसमें ज़ात, ये सब क्या है? ये तस्दीक है ना एक रंग उसकी। जब फरिश्ते देखते हैं तस्दीक हो रही, इतने फरिश्ते उतरे होते हैं इनामात के साथ, कैसे कैसे फरिश्ते होंगे आसमान से जो नीचे आए होंगे इस वक्त अल्लाह के हुक्म पर। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह जोश में आगे फिर फरमाते हैं, हुक्म देते हैं कि मैं इनको जहन्नुम से आज़ाद करता हूँ। यही चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हम जिस रात में गया था कि हमारे पास है कुछ नहीं, जिस वक्त जाएंगे आखिरत के अंदर तो यही होंगे मौके जो अल्लाह हमें दे दिए हैं, हम उनको अवेल कर लिया है। तो कहाँ हमारे ऐसे अमाल कहाँ हैं, कौन से ऐसे अमाल जो हम अल्लाह को दिखा देंगे, या कौन सी ऐसी हमारी बख्शिश के हमने सम्मान किए हैं, हमारे पास है क्या? इधर कोई निकी करते हैं उधर ही गुनाह करके उसको साफ़ कर देते, इधर कोई निकी करते हैं थोड़े दिन गुनाह करके फिर उसको साफ़ कर देते, है तो यही हमारा वाइप क्लीन वाला चक्कर चल ही रहा है। तो ये जो छोटे छोटे मौके अल्लाह पाक हमें इनायत फरमा देते हैं, जैसे आप किस उम्र में जाकर मुझे ये मौका तो मिला, आप कुछ सोचें ये अल्लाह कितना बड़ा शुक्र है। तो फिर अल्लाह ताला फिर ऐसे मौके तो फिर वहाँ तो खड़े होंगे मुँह झुकाए तो फिर अल्लाह ताला कहे चलो वो वक्त याद करो जिस वक्त मैंने ये फेल तुमसे करवाया था, तुम्हारे नज़दीक तो शायद अहमियत ना रखता उसको, लेकिन तुम्हें क्या मालूम कि वो वक्त था कि मैंने अपना वादा पूरा किया था, मैंने तुम्हें जहन्नुम से आज़ाद कर दिया। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला की हदीस और ज़्यादा आ रही इस वक्त इस मजलिस के सदक़े में अल्हम्दुलिल्लाह, यही दिन है अरफात का। इसी दिन अल्लाह पाक जो है वो नज़र फरमाते हैं पूरी लोगों पर। अल्लाह का नज़र फरमाना क्या है, यानी अल्लाह की रहमत ढूंढ रही होती है कि मैं इनको बख्श दूँ, इसको नज़र कहेंगे अल्लाह ताला। अल्लाह की रहमत जो है उस वक्त खूब जुल पर होती है कि बख्शिश और माफ़ी के नज़र फरमा रहे होते हैं सब पर। तो ابن ابو روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو. تو اللہ کی جو نظر جاتی ہے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ بھئی دیکھنا یہ ہے کہ کون شخص جو اس وقت ہے ایمان کی حالت موجود ہے اور ذرہ برابر بھی وہ ایمان کی تصدیق کر رہا ہے الحمدللہ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا. اب یہ اس حدیث میں یہ ہے کہ بھئی یہ حاجیوں کے لیے ہو سکتی ہے, ادھر ہی نظر کروائیں گے بھئی حاجی لوگ آئے ہوئے ہیں, اللہ کی رحمت تو وہیں ہے نا, تو ہم تو ان کے صدقے کام دے رہے ہیں, اصل کام تو عرفات میں چل رہا ہے, ہمیں تو انہی کے صدقے مل رہے ہیں, اگر عرفات میں حاجی نہ آئے ہوگا ہمیں کیا ملتا. تو یہاں انہوں نے ایک سوال کر دیا ابن عمر رضی اللہ عنہ, یا رسول اللہ یہ صرف عرفات والوں کے ساتھ ہے یا باقی لوگوں کے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو بولٹن والوں کے ساتھ بھی ہے, یہ کام کریں صحیح جو وہ کر رہے ہیں, وہاں بھی نظر جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. ہاں شرط یہی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, ایمان کی تصدیق ہو رہی ہو, لا الہ کے ذرے میں پڑھ رہی ہوں, اللہ کی یاد میں محو ہوں, وقت نہ ضائع کر رہا ہوں, اس قیمت کا احساس رکھتے ہیں, اس کی قیمت کو سمجھتے ہوں, یہ وقت جو ہے اپنے رب کو یاد کرنے کا ہے, معافی مانگنے کا ہے, یہ احساس ان میں پیدا ہو گیا ہو تو پھر وہ بے شک بولٹن میں ہو, بری میں ہو, کسی جگہ بھی ہو, یہ کام جو شخص کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس پر میری نظر پہنچ چکی ہوتی ہے اور میں اس کو بخش دیتا ہوں. تو میں بہت سی باتیں ہیں الحمد للہ کہنے کی, تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کام بنا دیا ہمارا, مفت سے کام بن گیا الحمد للہ, چلتے پھرتے ہی بن گیا کام, تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. تو اس کا شکر یہ کریں کہ دل میں تھوڑی بات, اللہ جتنا بڑا نعمت دے رہا ہے, بخشش ہو رہی ہے, جہنم سے آزادی ہو رہی ہے, اس کے کرم ہو رہے ہیں, تھوڑا ہم بھی اللہ کی طرف جھکیں تو صحیح نا, نہیں تو ایک وعدہ ہی کر لیں کہ انشاءاللہ نماز کے ساتھ پابندی رکھیں گے نماز کی, کیوں بھائی, اور یہ کوشش کریں گے اس بات میں یہ کر لیں کہ ہم تہیں کمزور, اللہ اس دن بہت بڑا ہے, ہم اسی عبادت کی تو اس سے وعدہ کرتے ہیں جو تو بہت ہی محبوب کرتا ہے, اور ساری عبادتوں کا رنگ ہی نماز کے اندر, یہ ذکر بھی نماز کی وجہ سے کہا نہیں کہ ذکر بھی نماز جو ہے ذکر پہ قائم ہے, تو یہ نماز جو ہے حقیقت تو یہ سب ذکر جتنی جو عبادت کرتے ہیں اس کے سب سے بڑا, سب سے بڑا جو رزلٹ ہو کیا ہے, اچھی نماز, اور کیا, ورنہ اچھی نماز نہ تو ذکر کا کیا فائدہ ہو, اللہ کہے گا ذکر تو نہیں کر رہے تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, تو بھائی یہی وعدہ ہم کر لیں, اتنا بڑا اللہ انعام ہمیں دے رہا ہے, تو جو اللہ کو سب سے بڑی چیز ہے جو ہمارے یہاں بھی کام آئے گی, جو قبر میں بھی کام آئے گی, جو حشر میں بھی کام آئے گی, جو ہمیں بخشوائے گی بھی, جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گی, جو جنت درجات بلند کرائے گی, جس سے اللہ تعالیٰ کی دیدار نصیب ہوگا, وہ واحد ایک ہی عبادت وہ کیا ہے, سجود, یاد رکھیں ہے وہ کیا چیز, سجدہ, اس کا چسکا لانا دنیا میں دے دیا, کسی عبادت میں وہ چسکا نہیں ہے, کھڑے ہو جھکتے جاؤ جھکتے جاؤ جھکتے, جہاں ماتھا ٹیکا اللہ کہتا ہے معراج ہو گئی تجھے, اس درجے کی عبادت ہے, معمولی چیز نہیں ہے کہ آدمی زمین پہ ماتھا ٹیک رہا ہے, خاک میں رگڑ رہا ہے اور ادھر اللہ کو مل رہا ہے, آپ اندازہ لگائیں, تو جب دنیا میں یہ حال ہو رہا ہے تو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے نمازوں کو لے کر تو پھر وہاں کیا حال ہوگا, اس کے ساتھ سوچیں سر, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ذکر کرو فلاں عمل کرو فلاں عمل کرو تو ہم یہ ڈاؤن ہو گیا, نہیں نہیں نہیں, سارے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں محور مرکز کیا ہے, نماز, یہ یاد رکھیں, ہمیشہ جو سچا ذاکر ہوگا اس کی نماز بھی سچی ہوگی, اس کا دین بھی سچا ہوگا, یہ ہے یہ نشانی, یہ بتا دو تو اصل مقصد کیا ہے نماز, تو پھر ہم اللہ نے اتنے انعامات دیے ہیں ہمیں سب کچھ دیے ہے, ڈنڈی مارتے ہیں ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں, جماعت چھوڑ دیتے ہیں اور بہانہ کر دیتے ہیں, یہ کتنی بڑی بات ہے, چلو آئیں اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہیں اتنے فضل ہیں, میں بھی کمزور ہوں آپ تو خیر نہیں کمزور, تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا, پہلی دعا تو یہی مانگ رہے ہیں اللہ سے اس وقت جو اللہ دے رہا ہے سچے دل سے, کوئی یہ نہ کہ میری نماز اچھی ہے, یہ بھی بات دل میں نہ رکھیں آپ, بات سب آدمی نماز بہت کمزور ہے, تو اللہ سے پہلی چیز تو یہی مانگ لو استاد جہاں کام ہوگا جس سے اللہ راضی ملے گا اور ملے گا جنت, سب کچھ اسی سے ملے گی, وہ چیز پہلے ہی مانگیں, اب وہ کیا چیز ہے, کیا چیز ہے, اونچا بولو بھائی, نماز, اب یہ ہم نے اللہ سے کہنے, اللہ پاک تو اتنے نماز ہمیں دے رہا ہے سب کچھ تو دے رہا, ایسا موقع تو نہ تافر میں اپنی بخشش کر جہنم سے, تو بس ہم تو اسے ایک چیز مانگتے ہیں ہمیں پکا نمازی بنا دے, نماز کی تو بھاگتے آئے ہم, اس نماز کے درد ہو جائے ہمارے نماز میں कुछ भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, दुकान पे खड़े हो, बातें कर रहे हो, टैक्सी चला रहे हो, पर दिल धड़कने लगे जब नमाज का टाइम आया। बुरी लगे हर चीज़, वो ग्राहक भी बुरा लगे जो बैठा है टैक्सी में, वो दुकान भी बुरी लगने लगे, वो पैसे ही बुरे लगने लगे, वो आदमी बुरे लगने जो बातें कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह जो मेरे प्यारे नबी ने बताया। हज़ाशत सदीक हमारे जमा बताते हैं कि जिस वक्त नमाज की अज़ान होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज़ ही छीन लगती थी। हम वही जो से हमें मोहब्बत से मिल रहे हैं, प्यार करें, हम ही भूल जाते थे। तो फरमाया ये रंग हम पे चढ़ गया, आप तो तशरीफ ले गए, हमारा ये हाल हो गया कि जिस वक्त अज़ान हुई हमें भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। तो उम्मत कैसी है फिर मुझे बताएं, सोच हमें वो चीज़ें क्यों अच्छी लगती हैं, बैठे रहते हैं बस, हाँ चलते हैं, बस चलते हैं यहाँ, ओ अच्छा कज़ा हो, चलो यार इधर एक जवाब कर लेते, ये क्या बात है, ऐसी बातें तो नहीं होनी चाहिए इंसान के, होनी चाहिए। ये इतने बड़ा अल्लाह मौका दे रहा है, बख्शिश करा रहा है, जहन्नुम से आज़ादी दे रही है, कोई अमल भी नहीं होगा जो हमें ये चीज़ें मिल जाए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कोई अमल नहीं होगा कि हमारी बख्शिश हो जाए, हम जहन्नुम से आज़ाद हो जाए, हम जन्नत में चले जाएँ, कोई नहीं होगा, ये मिल रहा है। इसके सदिंग हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह ताला कि तुझे सबसे महबूब चीज़ है, जो तेरे महबूब की आँखों की ठंडक है, सुभान अल्लाह, मामूली चीज़ नहीं है, महबूब की आँखों की ठंडक है, दिल का करार है, पुकार के अल्लाह के नबी ने कहा बिलाल अज़ान दो, ऐसे थे हैं ताकि मेरी राहत पहुँचे, मेरी आँखों की ठंडक पहुँचे, क्या महबूबियत की निशानी है आँखों की ठंडक। तो उसके लिए दुआ मांगे अल्लाह ताला हमें, मैं पक्का नमाजी कर और हर वक्त मस्जिद की तरफ भागे, और किसी जगह पर नहीं बनाया जमात खाना अपना, अपना अपना नहीं बनाना, किधर भागना है, बस जो मस्जिद बन गई ना मस्जिद है, उसकी खिदमत करनी, उसी के पास जाना, उसी की तरफ देना, मस्जिद में कोई प्रॉब्लम है तो चुपके से को बस उसका पूरा करना, पैसे देना उधर ही देना, सदका देना उधर ही देना, किसी आदमी की वजह से नहीं, देखना भी कौन सी मस्जिद है, इसमें क्या क्या चीज़ें खराबी हैं, इसमें यहाँ इतने लोग तो बेचारे दे नहीं सकते हैं, इसमें तंगी है, चुपके से जाके अकाउंट नंबर तो होते हैं ना इनके मस्जिद वालों के, ये नहीं लो जी पकड़े हम आपको दे रहे हैं, ये तो फिर मामला नहीं हुआ, बस दर्द के साथ की ये वो जगह है जहाँ मैं जाकर सजदा करता हूँ, जब पब्लिक अगर सजदा करती है और ये वो सबसे बड़ी इबादत कर रही है और जहाँ सबसे बड़ा अल्लाह मिलता है, तो अगर मैंने यहाँ कुछ खर्च कर दिया तो क्या इनाम मिलेगा, उसको नहीं पता है, जरूर देखना है कि भैया नहीं बस पता है ये अकाउंट नंबर उनका है, बस मेरे पास 200 पाउंड खाली है, इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं कि वहाँ मैं 200 पाउंड डालूंगा तो वहाँ एक नलका लग जाएगा, दरवाज़ा बन जाएगा, या पंखा लग जाएगा, या कोई चीज़ हो जाएगा। ये मोहब्बत किस वजह से, नमाज की वजह से, जब हम जाएंगे मस्जिद में हमें पता चलेगा तकलीफ है, जूते उतारने में तकलीफ है, भाई दरवाजे से हवा आ रही है, भाई फलां चीज़ आ रही है, पता चलता है ना, जब मस्जिद में जाएंगे। और ये तो कहीं भी दुनिया में आप देख लो, दुनिया में आप देख लो, बाहर लिखा होता है ये फलां बादशाह का महल है, अच्छा जी वो बना रहा है सज रहा है, ये फलां आदमी का मिंशन है, ये फलां आदमी का जनाब कोठी है, ये होता ना आजा मेरे फजल रिफात है, सुभान अल्लाह, एक टूटी फूटी चार ईंटों की थोड़ी चार दीवारी होती है, एक चराई बिछी होती है, उसमें लिखा होता है बैतुल्लाह, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर से बड़ा घर हो सकता है, अंदाजा लग रहा है, सारी दुनिया के महलात उसके आगे कुछ नहीं हो सकते, जो एक चटाई बिछी और चार कच्ची ईंटें लगी हों जिसमें, हो सकता है भाई, ये अल्लाह का घर है। तो हमारे घर इतने सजे बजे हों जनाब, थोड़ी अगर सेटी खराब हो जाती है तो नई सेटी आती है, नए कारपेट खराब होते, जो अल्लाह का घर हो तो वो खराब है, कैसे लोग क्या मोहब्बत है नवाजों से, और उसमें भी मन्नतें करें उनकी, उनसे कहा जाएगा कि हमें पैसे दें फला दें, ये तो है ही नहीं। आज ये तो पता चलता है कि जो आप इतनी ज़्यादा चंदों के पीले की जाती हैं, तो अफसोस का मुकाम है ना ये तो, कि हमें खुद क्यों नहीं गैरत आती इस चीज़ की, हम खुद देखें मस्जिदों में क्या कुछ होगा। हाँ ये टॉपिक किस तरफ और चला गया, लेकिन ये भी नमाज की मोहब्बत में ही बात कर रहा हूँ मैं, कोई चंदे की अपील नहीं कर रहा किसी से, ये क्या है, तो पर्सनल बात है कि भाई जिसके दिल में हो मोहब्बत नमाज से, तो फिर वो नमाज की हर चीज़ से प्यार करता है, होता है ना, नमाज की हर चीज़ से प्यार करता है। तो दोस्तों अल्लाह से अब हम जिक्र शुरू करते हैं और अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमने दुआ कहाँ से शुरू करनी है, नमाजी बनाओ, नमाज है तो सब कुछ, फिर बरकत भी आएगी, घर में बरकत आएगी, प्रॉब्लम भी हल होंगी, मुसीबतें दूर होंगी, बच्चे भी फरमानबरदार होंगे, रिज़्क भी आएगा, हलाल भी आएगा, पर जब नमाज सही होगी तो सब कुछ ऐसा भागता आएगा जिस तरह कि अल्हम्दुलिल्लाह आप रोक भी नहीं सकते उसको, अंदर घुस जाएगा आपके, रोक भी नहीं सकेंगे, इतनी अल्लाह की बरसात में रहमतें आना शुरू हो जाती हैं जिस घर में नमाज शुरू हो जाए, जहाँ से नमाज गई अल्लाह की रहमत गईं, फरिश्ते गए, लानते आते हैं, जिन्नात आते हैं, भूत आते हैं, और जनाब अला बीमारियाँ आती हैं, जादू आते हैं, और हजारों किस्म किस्म के बेशक कितने सजा लें उस घर को आप, कितनी कीमती बना लें, लेकिन आप इन बलाओं को नहीं रोक सकेंगे। रोकना है तो किससे? अल्लाह की नमाज से। ठीक है भाई, पक्का वादा, सच्चा वादा, इंशाल्लाह सारी नमाजें कहाँ होंगी? आप कोई मस्जिद मिल जाए उसमें घुस जाओ, बस हमें नहीं पता कि हम नमाज पढ़ने आए हैं। और दूसरी चीज़ क्या समझाइए कि जहाँ मस्जिद में देखें आप, क्योंकि आप देखें ज़रूरत है आपकी, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, चुप करके उस जरूरत को पूरा करते हैं, बहुत प्यार करेंगे अल्लाह ताला। याद रखना, ये अजीब नुकता आज मेरे जहन में आई है बात, इससे पहले मैंने नहीं सोची थी बात, कि कितने अच्छे हमारे पास है अल्लाह को राज़ी करने का। देखिए नमाजी नमाजी आते हैं, कैसे मेरे पास 500 पाउंड है, चलो यार ये तो डालो इसमें, ये तो, या ये नहीं कर सकते कोई प्लम्बर आपको जानने वाला कुछ है उसे इजाज़त नहीं करती, मैं दिल चाहता है मैं इसको सही कर दूँ थोड़ा, तो उन्हें क्यों रोकना है आपको? रोकना वो कहेंगे जी कर दें, ये तो बहुत अच्छी बात है, और खुद प्लम्बर है आप, इलेक्ट्रीशियन या कुछ और है, खुद जाकर काम शुरू कर दें, करना चाहिए ना, ये नहीं करेंगे इंशाल्लाह तो मस्जिद खुद बनना शुरू, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी चंदा मांगेगा, कोई ठेकेदारी नहीं मानेगा, हर आदमी राइट रखता है चीज़ पर। तो भाई इंशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त है, जिक्र शुरू करते हैं, दुआओं का वक्त है, ख़ासतौर पर भाई अपने मरहूमिन के लिए दुआ मांगे, जब बीमार हैं ख़ासतौर पर बीमारों के लिए दुआ मांगे, बेचारे बीमार तो ना कितने बुरे हाल में होंगे, ना आ सकते हैं अस्पतालों में पड़े हैं, या उनके साथ बहुत से मामलात हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो उनके लिए ख़ास दुआ करें, ख़ास बेचारे बीमार हैं, बहुत से लोगों को कैंसर हुआ है, किसी एक औरत के मत है उसको भी कैंसर है, किसी और आदमी का उसको भी कैंसर है, जवान होते हैं बेचारे, कुछ अधेड़ उम्र के लोग होते हैं, कुछ अभी इस काबिल नहीं है कि ठीक ठाक लोग होते हैं, बीमारी मतलब, लेकिन अल्लाह ने वादा किया है आज कि जो मांगोगे दूंगा इंशाल्लाह, तो आज सब दुआएं मांगनी हमने। और ये भी बड़ी अच्छी बात यह है कि जो जिक्र जो है ना, इसमें सारी दुआएं हैं, क्योंकि अगर हम दुआओं की तरफ चाहें तो फिर जिक्र रहता है, अल्लाह ने फिर इसको ज़रा मुख्तसर कर दिया, कट किया, कि तुम दुआओं की तरफ ना भागना, है तो आदमी लालची, तुम इस तरह करो जिक्र करते रहो, मैं बगैर मांगे दे दूंगा, सुभान अल्लाह, तुम अपने काम पे लग रहे हो, अल्लाह ताला कहता है मुझे पता है तू कुछ क्या है तेरे अंदर, क्या तू मांगने आया, क्या चाहता है, तो तू अगर मुझसे मांगना शुरू होगा तो काम रुक जाएगा, मेरा तेरा कनेक्शन कमज़ोर होता है, तो तेरा काम मैं कर दूंगा, तू काम का अपना करता है, तो हमारा काम है दुआएं पी बेचे ना मांग सकें, दुआएं मांग रहे हैं, हसबुन अल्लाह क्या है, इससे बड़ी क्या दुआ होगी मुझे बताएं, ला इलाहा इल्लल्लाह तस्मा, इससे बड़ी कोई दुआ है, या हय या क्यों खत्म ही होंगे, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ किस मुकाम पर मांगी मुझे बताएं, और क्या मांगना, तो अब इस चक्कर में ना पड़ जाएंगे हम हाथ ये नहीं करें हाजरत और काफ़ी के साथ दुआएं मांगनी और फलां करना, इस छोड़ के सीधा साधा जिक्र पे लग जाओ, पीछे खुद मामला बनता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और सब काम पूरा हो जाएगा।